14 सितंबर दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक संकट अब भी जारी। शिवपाल सिंह ने कहा जो मुलायम कहेंगे वो वही करेंगे
और जो भी आगे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं और बखूबी संगठन का काम देखेंगे।
जिक्र होगा दिल्ली में फैले चिकनगुनिया और डेंगू का और दुनिया जहान में आज बताएंगे अब क्यों प्रचंड के भारत के रवैये में आया है फर्क।
तो जिस पृष्ठभूमि में प्रचंड प्रधानमंत्री अभी बने हैं उससे एक संदेह पैदा होता है क्योंकि केपी ओली को प्रधानमंत्री बनाने में भारत को डिफाई करके संविधान लागू करने में प्रचंड की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग में अब मामला पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गया है। गुरुवार को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। वहीं इससे पहले बुधवार को दिल्ली में शिवपाल यादव ने बड़े भाई मुलायम से करीब 2 घंटे लंबी बैठक की। बुधवार सुबह घर में कलह पर पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि ये परिवार का नहीं सरकार का मामला है। ब्रिटेन की संसद ने 2011 में लीबिया के नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व की आलोचना की है। विदेश मामलों की समिति ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन पर आरोप लगाया है कि उनके पास हवाई अभियान के लिए स्पष्ट रणनीति की कमी थी। समिति का कहना है कि जब गद्दाफी अरब क्रांति के दौरान विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तब फ्रांस ने लीबिया के लोगों पर छाए खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। विदेश समिति के अध्यक्ष क्रिस्पिन ब्लंट ने कहा कि गद्दाफी सरकार को बेदखल करने के बाद क्या होगा इसे लेकर विदेशी ताकतें पूरी तरह तैयार नहीं थीं। क्रिस्पिन ब्लंट ने कहा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डेविड कैमरन ने निर्णय लेने में अहम जिम्मेदारी निभाई। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति तक ले गए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में MI6 को लेकर चिंता के बारे में किताब में छपा है। उन्होंने हमें सबूत नहीं दिए लेकिन रक्षा विभाग के प्रमुख ने हमें सबूत दिए और साफ किया कि ये कार्रवाई डेविड कैमरन के आकलन के मुताबिक ब्रिटेन के हित में थी न कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों की नज़र में। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में युद्धविराम के बावजूद संयुक्त राष्ट्र अब तक विद्रोही कब्जे वाले इलाके एलेप्पो सहित कई जरूरतमंद जगहों पर मानवीय सहायता नहीं पहुंचा पाया है। रूस से भेजी गई मानवीय सहायता की गाड़ियां सरकार नियंत्रित होम्स प्रांत तक पहुंच गई हैं। विपक्षी राजनेताओं का कहना है कि सीरियाई सरकार के नियंत्रण और जांच के चलते सहायता पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन बीबीसी संवाददाता का कहना है कि बड़ी संख्या में मौजूद विद्रोहियों से बचाकर सुरक्षित रास्ते से सामान पहुंचाने की कोशिशों की वजह से ये देर हो रही है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष यीन क्लाउट यंकर ने कहा है कि ब्रिटेन के छोड़ने के बावजूद यूरोपीय यूनियन खतरे में नहीं है। ब्रिटेन के जनमत संग्रह के बाद पहली बार बयान देते हुए यंकर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के बाकी 27 सदस्य बढ़ते राष्ट्रवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की अपनी सेना बनाने की बात की है और साथ ही यूरोपीय यूनियन का एक ही विदेश मंत्री होने का सुझाव भी दिया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कहा है कि रूसी हैकर कंप्यूटर से चुराई सामग्री जारी कर संस्था और ग्लोबल एंटी डोपिंग सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में मंगलवार को दिनभर चला राजनीतिक संकट आज बुधवार को भी जारी रहा। सुबह शिवपाल सिंह यादव और बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। हालांकि कहा जा रहा था कि बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी संकट टला नहीं है और आने वाले 1-2 दिन पार्टी के लिए मुश्किल भरे भी हैं। दिन भर के घटनाक्रम पर सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में चल रहे राजनीतिक और पारिवारिक संकट के अहम किरदार शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो सैफई में थे और वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात की। कई सवाल पूछे गए लेकिन उनके जवाबों में एक ही बात बार बार दोहराई गई, कि जैसा नेताजी कहेंगे वैसा करेंगे।
जो नेताजी ने जिम्मेदारी दी है संगठन की, तो हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और जो हमने 4 साल में जो हमारी सरकार ने हमने जो भी काम किए वो जनता के बीच में और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है, और जो भी आगे नेताजी जो भी निर्णय लेंगे वो हम नेताजी के साथ हैं और बखूबी संगठन का काम देखेंगे।
शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में कल अहम पद सौंपा गया और उसके कुछ ही देर बाद सरकार के कई अहम विभाग छीन लिए गए। विभाग छीने जाने के सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया,
मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जिससे भी सलाह लेना चाहे ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है।
बुधवार को जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था उस दौरान शिवपाल सैफई में ही थे और आज पत्रकारों से बात करने के बाद सैफई से सीधे दिल्ली मुलायम सिंह यादव से मिलने चले आए। हालांकि देर रात तक ये चर्चा थी कि मुलायम सिंह यादव इस गंभीर संकट से बेहद परेशान हैं और रात में ही लखनऊ आकर सुबह तक कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव और गायत्री प्रजापति को सीधे दिल्ली ही बुला लिया। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के अपने कई कार्यक्रम निरस्त कर दिए और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भी यही कहा कि नेताजी की बात को कोई टाल नहीं सकता। अखिलेश ने बातचीत में सरकारी फैसलों में बाहरी लोगों की दखलंदाजी पर एतराज जताया, जिसके बाद इन बाहरी लोगों को लेकर चर्चा काफी गर्म रही। यादव परिवार से नजदीकी रखने वाले इटावा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाक्य कहते हैं,
2012 को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव की ताजपोशी होती है, उसी दरमियान शिवपाल सिंह यादव जो सत्ता प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भाई है, उनका भी इसी तरीके का दावा था कि वो उत्तराधिकारी है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का हक उनका ही जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। बीच बीच के स्तर पे तमाम प्रयास किए जाते रहे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमर सिंह को एक वक्त समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, फिर शिवपाल सिंह यादव की पहल पर ही अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में एंट्री मिली। आज का जो परिवेश बना हुआ है जिसमें ये सब चीजें देखी जा रही है उसके पीछे अमर सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
यादव परिवार में आपसी विवाद नया नहीं है, लेकिन ताजा शुरुआत सोमवार को दो मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद से हुई। इनमें गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह यादव के खास बताए जाते हैं तो राजकिशोर सिंह शिवपाल के। यही नहीं, अगले दिन शिवपाल के बेहद करीबी मुख्य सचिव दीपक सिंघल को पद से हटाने के बाद तो हड़कंप ही मच गया। इस कार्रवाई की तुरंत प्रतिक्रिया ये हुई कि अखिलेश यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को दे दिया गया। इस पद पर अखिलेश पिछले 8 साल से काबिज थे। बाद में अखिलेश यादव ने शिवपाल के तमाम विभाग छीनकर इसका करारा जवाब दिया, लेकिन आज के घटनाक्रम के बाद ये चर्चा भी थी कि शायद ये विवाद थम गया है, लेकिन दिनेश शाक्य ऐसा नहीं मानते।
शिवपाल सिंह यादव जिस वक्त इटावा के सैफई से दिल्ली के लिए रवाना हुए उसी वक्त समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव राज्यसभा सदस्य इटावा के सैफई आ चुके हैं और अब कुछ क्या अंदर खाने में यहाँ तय हो रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 24 घंटे में के अंतराल में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
बहरहाल पार्टी के भीतर चल रहे इन विवादों पर राजनीतिक चर्चाएं तो गर्म हैं ही, विपक्षी दलों को सवाल उठाने और चुटकी लेने का भी मौका मिल गया है। राजनीतिक चर्चा में हर पल यही कयास लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब क्या होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
मैंने फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट के संपादक अजय सिंह से संपर्क किया और पूछा कि अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि लड़ाई सरकार की है न कि परिवार की, इस वक्तव्य को आप किस तरह से लेते हैं?
नहीं, हमारे ख्याल से तो एकदम नहीं। अगर सरकार की लड़ाई है तो पिछले 5 साल में कौन से वर्क एथिक्स में अखिलेश ने ऐसा चेंज करके दिखाया जिससे ये माना जाए कि वो परिवार के और लोग जो हैं उनके साथ नहीं थे, तो लिहाजा इलेक्शन के पहले इस तरह के पोस्चरिंग लेना उसका कोई अर्थ है नहीं, सिवाय इसके कि ये फैमिली फ्यूड है और फैमिली में भी कम्पीटिंग एम्बिशंस के जो फैमिली के फैक्शंस हैं उनका फ्यूड है और इसको उसी रूप में देखना चाहिए। उससे ज्यादा इसको नैतिकता का जामा पहनाना या ये पहनाना कि वो कुछ अलग टाइप का चाहते थे, हमारे ख्याल से वो अर्थहीन होगा।
अच्छा, ये बताएं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाना चाहिए, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव?
देखिए, जो कुछ हो रहा है उसमें कोई आश्चर्य की बात हो तो ठीकरा फोड़ने की बात हो, यहाँ जो हो रहा है वो मुलायम सिंह की राजनीति अगर आप पिछले 20 साल से देख रहे हो तो इससे अलग है ही नहीं। फैमिली को लेके वो जिस तरह से आगे चलते हैं वो हमेशा उनका एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, फैमिली और कुछ मित्रों को। तो कुल मिला के मुलायम सिंह की राजनीति ही ये रही है, उसमें बेटा उनका उनकी बात नहीं सुनता है, ये एक फैमिली फ्यूड का रीजन उसका हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कुछ देखें कि उसमें बेटा मुलायम सिंह से अलग है, हमारे ख्याल से वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा।
अच्छा ये बताएं, इस पूरे प्रकरण से ब्रांड यादव को कितना नुकसान पहुंचा है?
नहीं देखिए, ब्रांड यादव को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड यादव जो था वो यही है, मुलायम सिंह। यादव का मतलब हमारा आशय किसी जाति विशेष से नहीं है। मुलायम सिंह की फैमिली की जो राजनीति है वो पिछले दशकों से यही रही है। तो अगर आप मुलायम सिंह का ब्रांड कहें तो उसमें ये होता रहा है, और आप देखिएगा ये कोई ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज जो कुछ हैं वो उनमें उनका कोई अपना कोई कंट्रीब्यूशन है ऐसा हमें नहीं लगता है। वो मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीतिक कैपिटल तैयार की थी यूपी में, ये उसी मतलब उसको ये उपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज अखिलेश यादव को अगर आप अलग से देखें तो अखिलेश यादव कोई इतने बड़े नेता नहीं है, और यूपी में 5 साल उन्होंने कोई ऐसा शासन नहीं दिया है जो उनकी छवि कुछ अलग।
अच्छा ये बताएं, आप इस तरह की किसी संभावना से इनकार करते हैं कि नौबत इस हद तक पहुंचेगी कि विभाजन भी हो सकता है इस पार्टी में?
साहब एकदम नहीं होगा। देखिए हमारा जो मानना है वो ये है कि ये गॉडफादर जो होता है ना, गॉडफादर के फैमिली में जो कम्पीटिंग एम्बिशंस होते हैं डिफरेंट फैक्शंस के, ये उसका झगड़ा है। और गॉडफादर का जब तक इन्फ्लुएंस होता है वो एम्बिशंस आपस में झगड़े तो होते हैं लेकिन वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जाते। यहाँ मुलायम सिंह है और मुलायम सिंह के इन्फ्लुएंस से बाहर जाने कि इनमें से किसी फैक्शन की ना हैसियत है ना क्षमता है।
ये थे फर्स्ट पोस्ट के संपादक अजय सिंह।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू महामारी का रूप धारण करते जा रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा अस्पताल हो जहां इन बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या कम हो। दिल्ली की सरकार का दावा है कि हालात काबू में हैं और इन बीमारियों से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, मगर जमीनी हकीकत सरकारी दावों के ठीक विपरीत है, जहां लोगों को इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
मेरी लड़की की तबीयत 7 तारीख को अचानक खराब हुई, उल्टी बुखार दस्त।
ये है एक बाप की बेबसी की दास्तां।
मैं अपनी बच्ची को लेके लाल बहादुर में आया, फिर उन्होंने वही दवाई मुझे रिपीट करके फिर मुझे भेज दिया गया। मैं रिक्वेस्ट करता रह गया कि सर मैं स्टाफ से हूँ, मैं वो हूँ, मेरे बच्चे को एडमिट करा जाए, मेरे बच्चे की सीरियस हालत है। उन्होंने मेरे कोई सुनवाई नहीं की गई, मेरे बच्चे को एडमिट नहीं किया गया।
धर्मेंद्र दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुरक्षा गार्ड हैं, मगर यहाँ काम करने के बावजूद धर्मेंद्र चिकनगुनिया से ग्रसित अपनी बेटी को उस अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए।
10 तारीख की रात को मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई अचानक। मैं रात को 12:15 बजे मैं यहाँ लेके आया। मैंने अपनी पर्ची बनवाई बच्चे की, इतने मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। अगर एक स्टाफ का हो तो मैं सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हुए मेरे साथ ये हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा है।
दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू महामारी की तरह फैल रहे हैं। शहर के अस्पतालों में चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।
पैर उठ नहीं रहा, पैर
नहीं लग रहा है, 101 डिग्री कल
काम नहीं कर रहा बिल्कुल,
ये दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं।
अब तक चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है और दिल्ली की सरकार का कहना है कि हालात काबू में हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना था,
पैनिक बिल्कुल ना फैलाएं। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है और मीडिया को कहते हैं छुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइएगा। चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए। सर मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह से हाथ जोड़ के आगे पीछे घूम रहा हूँ, LG साहब के भी और अफसरों के भी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी में फैल रही गंदगी का ठीकरा दिल्ली नगर निगम के सर फोड़ा। मंत्री चाहे जो कहें मगर दिल्ली के खिचड़ीपुर के इलाके के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा करने पर सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। यहाँ पर इलाज के अभाव में एक 15 साल के लड़के दीपक ने दम तोड़ दिया।
बिल्कुल ठीक था, रात को इसको फीवर चढ़ा, इसकी बड़ी बहन लेकर के लाल बहादुर आई, लाल बहादुर वाले ने पैरासीटामोल दिया और वापस कर दिया, फिर दोबारा लेके आई, फिर वही दवाई रिपीट कर दिया, फिर जैसे घर गई, घर पहुंची, जैसे घर पे जीने पे ही वो बेहोश लड़का गिर गया और फिर हम लोग उठा के इसको अस्पताल लेके आए, ये मृत घोषित कर दिया।
ये अस्पताल जरूर है मगर यहाँ नाखून की जाँच सही समय पर हो पा रही है और न ही दवाएं ही उपलब्ध हो पा रही हैं।
या मैं 50 रुपए दे दूं, अभी पन्नी भर के ले जाओ दवा की, डॉक्टर कर रहे हैं सप्लाई, गरीब आदमी आता है एकदम भगा देते हैं, मालदार एकदम आते हैं तो गाल पीटने लग जाते हैं, यहाँ ये अस्पताल है, धर्मशाला बनवा दो तो सही है बरात घर।
लाइन लगने के बाद में जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मतलब फिर भी पैरासीटामोल लिख देता है और टेस्ट के लिए लिख देता है, वहाँ जब टेस्ट करने जाते हैं तो वो 5 दिन बाद रिपोर्ट देते हैं।
महामारी का रूप ले रहे डेंगू और चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया कि 10 सितंबर तक चिकनगुनिया के 1158 मामले सामने आए हैं। सरकार का ये भी कहना था कि 1158 मामलों में से 804 दिल्ली के हैं जबकि 354 मामले दिल्ली के बाहर से आए हुए मरीजों के हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है क्योंकि चाहे वो निजी अस्पताल हों या सरकारी, चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रिहान फदल के साथ। नेपाल ने करीब एक दशक पहले एक हथियार बंद संघर्ष को सफल होकर सत्ता के आंगन तक पहुंचते देखा था। माओवाद की विचारधारा पर चले संघर्ष के नेता थे प्रचंड, लेकिन क्रांति के मैदान में सफल रहा आंदोलन राजनीति की गलियों में भटक कर रह गया। अब एक बार फिर सत्ता प्रचंड के हाथ में है और उनका दावा है कि अपनी गलतियों से सबक लेकर वो अब परिपक्व हो गए हैं। क्या अब सचमुच प्रचंड ने कुछ सीखा है या वो ये सब सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने इस हफ्ते यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
करीब आधी सदी की राजशाही के बाद हासिल हुए लोकतांत्रिक प्रशासन में भी जब हाशिए पर रहे बहुसंख्यक लोग विपन्नता की गलियों से बाहर नहीं आ सके तो नेपाल में माओवादी क्रांति ने सिर उठाया। दशक भर की क्रांति में 17,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई और नेपाल बदहाली की कगार पर पहुंच गया। आखिरकार नेपाल की सरकार झुकी और माओवादी सत्ता में आए। उस हथियारबंद क्रांति के नायक थे प्रचंड। नेपाल में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक चंद्र किशोर।
नेपाल के विपक्ष में प्रचंड परिवर्तन का एक प्रतीक बन गया था। नेपाली समाज की, नेपाली राज्य की पुनर्संरचना के लिए लोग उनमें देख रहे थे कि इन्हीं के माध्यम से नेपाल में परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी बदलाव आएगी और लोगों ने काफी कुर्बानियां दी। जो लोग उनसे सहमत नहीं थे हिंसा की राजनीति में, वे लोग भी विश्वास करते थे कि प्रचंड ही इस नेपाल में परिवर्तन ला सकते हैं।
वो साल था 2006। शांति समझौता भारत और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के दबाव पर हुआ जिसके नतीजे में माओवादी हथियार और राजा ज्ञानेंद्र एक छत्र राज छोड़ने के लिए तैयार हुए। अस्थाई संविधान के सहारे नेपाल में सत्ता की चाबी माओवादियों के हाथ में पहुंच गई और 2008 में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला, प्रचंड। बहुत से लोगों को तब पता चला कि प्रचंड का असली नाम है पुष्प कमल दहल। प्रधानमंत्री बनने के साथ प्रचलित नाम तो बदला लेकिन उनके तेवर विद्रोहियों वाले ही थे।
नेपाल में वामपंथी राजनीति हमेशा से भारत विरोध की राजनीति रही है। पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनमें भी वह मनोविज्ञान कहीं न कहीं था। दूसरा दिन भारत का सहयोग था कि नेपाल में 12 पॉइंट एग्रीमेंट हुई, जिस 12 पॉइंट एग्रीमेंट के कारण से विशिष्ट शांति समझौता हुआ और नेपाल में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो भारत कहीं न कहीं साझेदार था। तो भारत जाने के बाद इन्होंने कहा कि हम सेना समायोजन कैसे करेंगे, शांति प्रक्रिया को कैसे आगे ले जाएंगे, संविधान में कैसे सभी पक्षों की भागीदारी की बात करेंगे, लेकिन जब वापस आए तो फिर वो खेल खेलने लगे, जिससे बहुत बड़ी आशंका नेपाल के भीतर हो गई कहीं माओवादी सत्ता कब्जा तो नहीं कर रहा है वैधानिक तरीके से, जिसके चलते उनको सत्ता गुमाना पड़ा।
जोश के साथ सत्ता में आए प्रचंड ने भारत की बजाय चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के रूप में पहली यात्रा पर वो चीन गए। उनके शासन में चीन की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई कि भारत के लिए सहन करना मुश्किल होता गया। चीन से लुम्बिनी तक के लिए रेल मार्ग की खुली वकालत और भारत के साथ विवादित मुद्दों पर मुखर बयान ने प्रचंड को भारत के लिए असहनीय कर दिया। इस बीच देश में सेना प्रमुख को हटाने की कोशिश, माओवादियों के पुनर्वास और कोसी में बाढ़ से जूझते नेपाल को छोड़कर विदेश जाने की घटनाओं ने उन्हें नेपाल में भी अप्रिय बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 8 महीने बाद ही उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। इस दौरान उन पर शाही जीवन शैली को अपनाने के आरोप भी लगे। आनंद स्वरूप वर्मा नेपाल के जानकार हैं और वहां के माओवादी आंदोलन पर किताब भी लिख चुके हैं।
पहली बार साउथ एशिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री बना था जो घोषित रूप से अपने को माओवादी कहता हो और जिसकी पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष करके राजतंत्र को समाप्त किया था। तो ये तो तमाम उन ताकतों के लिए जो कम्युनिस्ट विरोधी हैं या जो पूंजीवाद समर्थक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए इस पार्टी को ध्वस्त करने के लिए उसके नेतृत्व पर इस तरह के हमले किए जा रहे थे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आरोप लग रहे थे दुर्भाग्यवश वे आरोप धीरे धीरे खुद सच होने लगे और एक परसेप्शन ये बनता गया कि प्रचंड की जीवन शैली बदल गई है, सोच बदल गई है और आज जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी की परिणति है।
प्रचंड की क्रांति पर सवार हो नेपाल ने जिस बदलाव की उम्मीद की थी वो तो नहीं मिली, उल्टे राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर पहुंच गई। नवंबर 2013 के चुनाव के बाद संसद में पहुंचे राजनीतिक दलों ने कड़ी मशक्कत के बाद जिस संविधान को बनाने में कामयाबी पाई उसका विरोध इतना प्रबल हुआ कि कई महीनों तक मधेशियों ने भारत से नेपाल की सप्लाई लाइन रोक दी। संविधान लागू होने के बाद जब इसका विरोध शुरू हुआ तब प्रचंड ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा,
नेपाली जनता के बहुत लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद और नेपाल की पार्टी नेताओं और जनता की काफी मेहनत के बाद संविधान सभा से संविधान आया है और नेपाल की ये संविधान सभा नेपाल की शांति प्रक्रिया के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद थी कि भारत भी इसमें गर्व महसूस करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि भारत को कुछ कंसर्न है और वो मुक्त कंठ से स्वागत नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा दुख तो जरूर हुआ है।
प्रचंड की बातों में इतनी नर्म आवाज शायद तब पहली बार सुनाई दी थी, लेकिन ये बदलाव सिर्फ बातचीत के लहजे में ही नहीं उनके मिजाज में भी नजर आने लगा। जल्द ही मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली को हटाया गया और नए राजनीतिक समीकरणों में प्रचंड के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। कई लोगों का मानना है कि मधेशी आंदोलन से लेकर प्रचंड की ताजपोशी तक में भारत की भी भूमिका है। आनंद स्वरूप वर्मा,
केपी ओली की सरकार से और भारत सरकार के बीच तनाव की क्या स्थिति हो गई थी, तो जिस पृष्ठभूमि में प्रचंड प्रधानमंत्री अभी बने हैं उससे एक संदेह पैदा होता है, क्योंकि केपी ओली को प्रधानमंत्री बनाने में भारत को डिफाई करके संविधान लागू करने में प्रचंड की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस वजह से प्रचंड भारत सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे कि कैसे प्रचंड को टेप किया जाए, कैसे उनको पालतू बनाया जाए और इस मामले में भारत सरकार को सफलता मिली है। जिस दिन प्रचंड प्रधानमंत्री बने हैं भारत के अखबारों को उठा के देखिए भारत के राजनेताओं की प्रतिक्रिया, उससे आभास मिलता है कि भारत को अपनी जीत का एहसास किस तरह से हुआ था।
प्रचंड के कंधे पर भारत का हाथ होने के आरोपों को तब और हवा मिलने लगी जब प्रधानमंत्री बनने के पहले ही उनके सुर बदल गए। भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत, प्रधानमंत्री बनने पर अपने गृह मंत्री को भेजकर पहली यात्रा की तैयारी और अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उनमें और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत समानता है। काठमांडू में वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक सी के लाल मानते हैं कि अब वो सच्चाई के धरातल पर उतर आए हैं।
एक तो उम्र का असर रहा होगा, दूसरी बात शायद उन्हें लगता था कि नेपाल की जो भू राजनीतिक अवस्थिति है इसको प्रयोग करके वामपंथी क्रांति नेपाल में किया जा सकता है। ज्यों ज्यों ये जो शीत युद्ध का ताप घटता गया तो उनको वास्तविकता से परिचय हुआ और तीसरा उनकी नेपाल की जो युवा शक्ति है नेपाल की गरीबी की वजह से यहाँ बधी नहीं हुई है जो क्रांति करे, काम की खोज में कोई अरब जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं हो भारत में जाके काम कर रहे हैं, तो क्रांति के लिए दबाव बनना चाहिए था वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। सारांश में कहे तो वो आकाश में से जमीन पर उतर आए और उन्हें लगा कि जमीन जो सख्त है खड़ा यही होना है।
इधर भारत प्रचंड के बदले तेवरों से तो खुश है, लेकिन इसमें अपनी कोई भूमिका होने से इनकार करता है। भारत के राजनयिक ये भी मान रहे हैं कि प्रचंड क्या कहते हैं इससे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि वापस नेपाल जाकर वो करते क्या हैं। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी।
मिस्टर ओली का एक जेंटलमैन एग्रीमेंट था प्रचंड के साथ, बजट पास करने के बाद मैं हट जाऊंगा, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर वो उससे मुकर गए, इन्होंने अपना कोएलिशन दूसरों के साथ जोड़ लिया। ये जो स्पेकुलेशन है, इन्होंने ये कराया, भारत ने वो कराया, ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई माने नहीं है। बोलने में देखिए, राजनीति में या राजनयिक दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ज्यादा माने नहीं रखता, अच्छी मीठी बोली कोई बोल सकते हैं। मुझे तो ये देखना है ऑन द ग्राउंड एक्शन वापस जाके वो क्या लेंगे।
प्रचंड में जो बदलाव दिखा है वो सिर्फ भारत के प्रति रुख में ही नहीं है। जानकारों का कहना है कि अब तक नेपाल के बहुसंख्यक गरीब तबके के हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रचंड अब राजनीति की उस राह पर चल पड़े हैं जहां समझौते और सौदेबाजी है, कारोबार और बयानबाजी है। आनंद स्वरूप वर्मा।
जो कुछ हो रहा है अभी वो जनता के हित में नहीं हो रहा है। जैसे भारत की सरकार इस समय जितनी भी नीतियां ले रही है वो पूंजीपतियों के हित में है, उसी तरह से प्रचंड भी अभी जो नीतियां लेने जा रहे हैं वो वहाँ के हो सकता है कि प्रिविलेज क्लास के हित में हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं उससे भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, जो एजेंडा लेकर के ये चले थे कि नेपाल की सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन, इस एजेंडा को पूरा करने के लिए आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, इस एजेंडा के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी और वह एजेंडा कहीं बैक बर्नर पर चला गया, जिनसे उम्मीद हो रही थी कि पूरे साउथ एशिया को एक नई रोशनी देंगे के लिए।
चीन में नई नेतृत्व के सत्ता संभालने के बाद प्रचंड उनसे मिलने के लिए 2013 में वहां गए और वहां से लौटने के बाद वो जब भारत आए तो उन्होंने कहा था,
नेपाल की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है और नेपाल जिस स्थिति में है, कहीं ना कहीं हम ब्रिजिंग का रोल तो प्ले कर सकते हैं।
प्रचंड से पुष्प कमल दहल तक के सफर में वो अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें कोशिश करनी होगी कि भारत और चीन के बीच नेपाल पुल बने या ना बने, कम से कम टकराव की वजह ना बने। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
रियो पैरालंपिक खेलों में आज जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया ने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय दल के साथ गए एथलेटिक्स कोच सत्यनारायण ने अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बात की राखी शर्मा से।
देवेंद्र का अचीवमेंट बहुत अच्छा है और क्या है, ये एक्चुअली इवेंट भी आफ्टर 12 इयर्स ओलंपिक्स में इंक्लूड किया है। आफ्टर 2004 का बाद में ये 12 इयर्स हो गया, तभी ये रियो ओलंपिक्स में ये इवेंट आया है। देवेंद्र झाझरिया को मैं भी, मेरा टीम का इंडिया, सब लोग उसको सेलेक्ट करना, इसलिए वो इतना परफॉर्मेंस 12 साल तक वो मेंटेन किया, वो बहुत बड़ा बात है। एंड अगेन ये इंडिया के लिए ये मैसेज होता है, सब लोग थोड़ा सा फिटनेस रख के अच्छा कर लिया तो कुछ ना कुछ अचीव तो कर सकता है।
आप पहली बार देवेंद्र से कब मिले थे और कब आपको लगा कि उनमें पोटेंशियल है, जेवलिन थ्रोअर एक अच्छे बन सकते हैं वो?
देवेंद्र को तो मैं तो 2004 में ही मिला था मैडम। देवेंद्र 2004 में फर्स्ट टाइम एथेंस में मेडल जीत के आया था। उस टाइम में हम लोग ये एक्चुअली पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में रहता था, उस टाइम उसको हम लोग उधर आनर करके, उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिकग्नेशन भी नहीं था। देवेंद्र को ये लास्ट 2013 लियान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसका भी उधर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था उधर लियान 2013 जुलाई में।
इसके अलावा बाकी के जो तीन मेडल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। दीपा मलिक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शॉट पुट में। वरुण भाटी हैं, इन्होंने मरियप्पन के साथ ही इन्होंने हाई जंप में ब्रोंज जीता और मरियप्पन जिन्होंने खुद गोल्ड मेडल जीता, इन सब की परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप?
इंडिया में मरियप्पा आने से, मरियप्पा 185 कर रहा था वो 189 कर दिया। इवन वरुण भाटी 180 कर रहा था वो 186 कर दिया। इवन झाझरिया 61 कर रहा था, 62 प्लस कर दिया। और उसका दीपा मलिक शी इज प्लेइंग ऑन दी 449 करती थी, इधर आके परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया, कोई परफॉर्मेंस में कमी नहीं रहा। और हमारा इंडिया का टीम इवन इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन ऑन दी हमारा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया दोनों साथ मिलके काम किया है। ये मिलके काम किया यही इसका वजह है ना, है ये रिजल्ट इतना अच्छा भी आया है।
एथलेटिक्स कोच सत्यनारायण सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग में अब मामला पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गया है। गुरुवार को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। ब्रिटेन की संसद ने 2011 में लीबिया के नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ब्रिटेन के नेतृत्व की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने, रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।